नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। त्रिराष्ट्रीय अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम आज ईटानगर पहुंची। छात्रों में गणितीय प्रतिभा को प्रोत्साहित कर स्वस्थ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से ईटानगर में पहली बार मैथ्स ओलंपियाड का सफल आयोजन हुआ। लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में 57वें मालिनी मेला का शुभारंभ भक्ति और उत्साह के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर राज्यसभा में भारत का रुख स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, केवल हिंदू सिख या बौद्ध धर्म के व्यक्ति ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के हकदार। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग की रोकथाम और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में अस्थायी रूप से हमलों पर रोक लगाने की घोषणा के बावजूद लेबनान में इसराइल के हमले जारी। और कोलंबिया सैन्य विमान दुर्घटना में 66 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इस पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा है कि भारत ने तनाव कम करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष 3 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है और इसने विश्वभर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि संघर्ष के कारण व्यापार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं।
युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है।
कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा को मौजूदा स्थिति और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने के अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उस धर्म का पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि यह स्थिति संविधान अनुसूचित जाति आदि 1950 के तहत स्पष्ट रूप से स्थापित है। न्यायालय के अनुसार 1950 के आदेश के खंड 3 के तहत लगाया गया प्रतिबंध बाध्यकारी है। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
अरुणाचल प्रदेश की यूपी स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में 25 मार्च से आयोजित होने वाली त्रिराष्ट्रीय अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम आज ईटानगर पहुंची, जहां अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अधिकारियों ने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और टीम प्रबंधकों को सम्मानित किया गया। पारंपरिक तरीके से आतिथ्य स्वागत राज्य में फुटबॉल के प्रति उत्साह और समर्थन को दर्शाता है। भारत के अंदर 23 टीम का यह दौरा अरुणाचल प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल में बढ़ती भागीदारी और खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को उजागर करता है। युवा राष्ट्र टीम की उपस्थिति से उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलने और युवाओं में खेल भावनाओं का बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसे राज्य में फुटबॉल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी माना जा रहा है। छात्रों में गणितीय प्रतिभा को प्रोत्साहित कर स्वस्थ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से युवा मामलों के विभाग द्वारा ईटानगर स्थित देरानाथुम गवर्नमेंट कॉलेज के सहयोग से पहली बार मैथ्स ओलंपियाड का सफल आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थानों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के थुपतेन एतोन ने उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमता का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं निर्जुली के नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गामा दोदुम ग्यामर प्रथम उपविजेता रहे, जबकि ईटानगर स्थित एलिजर इंग्लिश स्कूल के मार्तो न्योदू द्वितीय उपविजेता के रूप में उभरे हैं। लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में 57वें मालिनी मेला का शुभारंभ सोमवार से भक्ति और उत्साह के साथ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कार्दोनी की ओर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और विकास के महत्व पर जोर दिया। उद्घाटन सत्र से पूर्व सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पवित्र मालिनी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की और 5 दिवसीय उत्सव की सफल एवं विश्व शांति की कामना की। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग की रोकथाम और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने क्षय रोग के खिलाफ शुरुआती उपचार के महत्व का उल्लेख किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में अस्थायी रूप से हमलों पर रोक लगाने की घोषणा के बावजूद लेबनान में इसराइल के हमले जारी हैं। आज तड़के बेरूत से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेशामोन में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और 5 लोग घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लेबनान में लगभग 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।
इसराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोटरिच ने लेबनान के क्षेत्र पर कब्जा करने का आह्वान करते हुए घोषणा की है कि इसराइल की नई सीमा लिटानी नदी तक विस्तारित होनी चाहिए। हालांकि इसराइली सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में उसके अभियान सीमित और लक्षित हैं। सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीधी झड़पें जारी हैं और उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट किया जा रहा है। नाकोरा में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मुख्यालय पर भी हमला किया गया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने युद्ध समाप्त करने के लिए ही बातचीत का आह्वान किया है। तनाव बढ़ने के बाद से स्वास्थ्य केंद्रों पर 64 हमले हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने आज तड़के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इसराइल और अमेरिका के ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। नए हमलों में इटेल, दिमोना और उत्तरी तल अवीव में इसराइल के ठिकानों और क्षेत्र में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कोलंबिया में 128 लोगों को ले जा रहा एक सैन्य परिवहन विमान कल प्यूर्टो लेगिजामो में उड़ान भरने से तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 66 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए।
जनरल ह्यूगो अलेजांद्रो लोपेज बारेटो ने बताया कि विमान में 128 लोग सवार थे। इनमें सेना के 115 जवान, चालक दल के 11 सदस्य और राष्ट्रीय पुलिस के 2 जवान शामिल थे। बारेटो ने बताया कि 57 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि 4 सैन्यकर्मी अभी भी लापता है। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान पोटोमायो के एक अन्य शहर में सैनिकों को ले जा रहा था। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी हो रही है। बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 2 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है। मौसम विभाग ने कल तक आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई है। ये विधेयक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सदन में ये विधेयक पेश किया था। आज की चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बंद होने से उत्पन्न ऊर्जा संकट का पूरे विश्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि बदलती वैश्विक स्थिति को देखते हुए क्या ये बजट अब भी वैध है। श्री तिवारी ने पिछले महीने पेश किए गए बजट अनुमान अब पुराने हो चुके हैं। भाजपा के नवीन जिंदल ने कहा कि जब नीति अस्पष्ट होती है और इरादे नेक होते हैं तो जनता स्वयं राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए आगे आते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।